मेरे बहुत बहुत प्यारे साथियों, आप सभी को डॉक्टर विजय अग्रवाल का बहुत बहुत प्यार भरा नमस्कार। फ्रेंड्स, आज 17 जून 2019 है और आज के इस afis.com के डेली ऑडियो लेक्चर में मैं आप सभी का हार्दिक रूप से अभिनंदन करता हूं और आप सबके साथ ही मैं विशेष रूप से अभिनंदन करता हूं अपने उन 5 नौजवान साथियों का जिन्होंने एकेडमी की 10 से 24 अक्टूबर के बीच होने वाली क्लासेस के लिए अपने रजिस्ट्रेशन कराए हैं। इन दोस्तों के नाम हैं विकास यादव चंदौली उत्तर प्रदेश से, राज गौरव आपका गांव है गरखा जिला सरन बिहार से, शशिकांत सिंह आप हैं कोलकाता पश्चिम बंगाल से, सुनील बिश्नोई आपका गांव है संवत्सर जिला बीकानेर राजस्थान से और मुकुंद सिंह नेताम बिलासपुर छत्तीसगढ़ से। फ्रेंड्स, आज के मुख्य विषय के तहत मैं संसद का जो सत्र शुरू होने वाला है उसको आधार बनाकर के कुछ बहुत ही महत्वपूर्ण इम्पोर्टेंट बातें करूंगा, लेकिन आइए पहले दूसरी खबरों को देख लेते हैं। एक बहुत ही महत्वपूर्ण खबर, यूं कह लीजिए कि ये खबर ऐसी है जिसे आप एक लंबे समय तक एक बहुत ही महत्वपूर्ण तथ्य के रूप में इस्तेमाल कर सकते हैं। बहुत ही महत्वपूर्ण तथ्य। देखिए दोस्तों, अभी बहुत से टॉपर्स के जो प्रोग्राम्स हैं, जो अनुभव हैं, आपको यूट्यूब पर सुनने को मिलेंगे। जब आप अलग अलग टॉपर्स के अनुभव सुनते हैं तो आपको चाहिए कि आप उन पर कुछ गौर फरमाएं। ये नहीं कि अपना सुने और बात खत्म हो गई, सुने और बात खत्म हो गई। उनमें से आप अपने लिए जो महत्वपूर्ण बातें समझते हैं आपको चाहिए कि आप उन्हें नोट कर लें, और केवल नोट करके छोड़ नहीं दें, याद करने के रखने की चीज नहीं है, नोट करके उन्हें अपनी कार्य प्रणाली में लाएं, चाहे वो पढ़ने की प्रणाली हो चाहे आंसर राइटिंग की प्रणाली हो। अक्सर आप पाएंगे कि इस बार की खासकर मैं टॉपर्स में देख रहा हूं कि वो ये कह रहे हैं कि आप अपने आंसर को कुछ एक्सक्लूसिव बनाने की कोशिश कीजिए कि जो आप उत्तर लिख रहे हैं एग्जामिनर को ये लगे कि ये दूसरों की तुलना में थोड़ा सा अलग है। अब उसको आप कैसे करेंगे, उसके लिए उन्होंने बकायदे तरीके भी बताए हैं कि कुछ आप डायग्राम बना दीजिए, कुछ जो रिपोर्ट्स आती हैं उस रिपोर्ट्स का उल्लेख करके उनकी बातें कह दीजिए, कुछ डेटा आते हैं नए नए वो चीजें डाल दीजिए। तो उन्होंने 2-3 तरीके बताए हैं कि कैसे आप अपने आंसर को दूसरों से बेहतर बना सकते हैं। तो अब कौन सी ऐसी चीजें हैं जिन्हें आपको अपने दिमाग में रखनी है ताकि वो आपके आंसर को बेहतर बना सके। तो दोस्तों, बीच बीच में मैं अब इस तरह की बातों की तरफ आपका ध्यान दिलाता रहूंगा, हालांकि मैं पहले भी ऐसा करता रहा हूं। उदाहरण के तौर पर देखिए, अभी जब नीति आयोग की बैठक हुई थी तो उसमें हमारे प्रधानमंत्री जी ने एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात कही और उन्होंने ये कहा कि सन 2024 तक, यानी कि जो वर्तमान सरकार है जो 2019 में बनी है, 2024 तक रहेगी। 5 साल का टर्म होता है, यानी कि इस पूरे सरकार का जो समय पूरा होगा 5 साल का, तब तक भारत को हम 5,000 अरब डॉलर वाली अर्थव्यवस्था बना देंगे। अब ये उन्होंने बात कही 5,000 अरब डॉलर वाली अर्थव्यवस्था, ठीक है। अंग्रेजी के अखबारों में आप जब पढ़ेंगे तो अब वो 5,000 अरब डॉलर के लिए आपको अलग अलग तरीके के पढ़ने को मिलेंगे। इंग्लिश में होगा 5 ट्रिलियन इकोनॉमी, 5 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था। अब इसको आप याद कैसे करेंगे, यहां आपको थोड़ी मेहनत करनी चाहिए। मैं यहां एक बात आपसे बताना चाहूंगा, शायद आपको आगे भी काम आए। देखिए, जब हम 1,000 कहते हैं तो जितना भी 1,000 है, जैसे 5,000, तो आप 5 के आगे आप क्या करेंगे, 5 के आगे आप शून्य लगाते हैं, राइट। कुछ आप शून्य लगा देते हैं। 1,000 तक आप बहुत अच्छे से जानते हैं, मैं उसको उलझाना नहीं चाह रहा हूं। इंग्लिश में फिर आता है जहां से हमें परेशानी होती है, मैं इंग्लिश की परेशानी को हल करने की कोशिश कर रहा हूं, हिंदी में तो आप सब जानते ही होंगे, मिलियन, मिलियन। अब ये मिलियन का क्या मतलब होता है, आप अमेरिका वगैरह में चले जाए तो वहां मिलियन की लैंग्वेज में ही बात करते हैं। मिलियन को हम हिंदी में कहते हैं 10 लाख, चलिए आप उसको भी अगर भूल जाते हैं। तो अब मैं आपको शून्य के आधार पर एक सिद्धांत बता रहा हूं कि जब भी मिलियन हो तो जो एक संख्या है उसके आगे आप 6 शून्य लगा दीजिए। जैसे मान लीजिए 5 मिलियन, तो 5 आपने लिखा और उसके आगे आप 6 जीरो लगा दीजिए और उसको कैलकुलेट कर लीजिए कि वो आपकी अपनी भाषा में क्या हुआ। जब बिलियन की बात आए, बिलियन, तो बिलियन में आपको अब जितने भी बिलियन हैं उसके आगे 9 शून्य लगा लीजिए, 9 टाइम्स 0। जैसे मान लीजिए कि 5 बिलियन, तो 5 लिखिए और उसके आगे 9 बार 0 लगा दीजिए। अभी हमने बात की ट्रिलियन, ए ट्रिलियन क्या है, तो जितना भी ट्रिलियन है लिखिए उसे और उसके आगे 12 बार जीरो लगा दीजिए, 12 टाइम्स जीरो, तो उस आपका वो हिंदी का निकल जाएगा। तो अभी फिर जब हम इसको डॉलर में कन्वर्ट करते हैं तो वो होता है लगभग 5,000 अरब डॉलर, 5,000 अरब डॉलर। अब ये डॉलर है, एक डॉलर 70 रुपए का है। तो किसी किसी हिंदी अखबारों में यह आंकड़ा दिया हुआ है, अब आप इसमें से किसी को भी याद रख सकते हैं, आपके ऊपर है, लेकिन मुझे लगता है कि अगर हम हिंदी में याद कर लेना तो वो हमारे दिमाग में ज्यादा बैठता है। तो हिंदी अखबार में दिया 350 लाख करोड़ रुपए की अर्थव्यवस्था हम 2024 तक बनाएंगे, यानी कि अब एक आंकड़ा अर्थव्यवस्था के लिए, एक परमानेंट आंकड़ा जो 5 सालों तक आपके काम आएगा। हालांकि मैं यही प्रार्थना करूंगा कि आपको इतने साल तक इसका उपयोग न करना पड़े, आप सबका उससे पहले ही सिलेक्शन हो जाए। तो हो गया कि भारतीय अर्थव्यवस्था को 5 सालों तक 2024 तक जो हमने टारगेट बनाया है वो है 350 लाख करोड़ रुपए का। अब स्वाभाविक है कि फिर अभी वर्तमान में हमारी क्या स्थिति हम ये भी तो जाने। तो अभी जो हमारी स्थिति है मित्रों वो बहुत बेहतर नहीं है। मतलब ये माना जाता है कि अगर हम 5000 अरब डॉलर को एक आंकड़े के तौर पर ले लें तो 2019 तक एक्सपेक्ट हम कर रहे हैं कि 2750 अरब डॉलर की हमारी अर्थव्यवस्था होगी, 2750 अरब डॉलर। यानी कि अब आप एक आंकड़ा आप फिर से अपने दिमाग में ला सकते हैं कि वर्तमान से दुगुना, 2750 है और 5000 का हमने टारगेट रखा है, तो वर्तमान से दुगने से थोड़ा सा ही कम है। इस टारगेट को हमें हासिल करना होगा 5 साल में, और यह आसान काम नहीं है, यह बहुत बहुत कठिन काम है इस टारगेट को हासिल करना। लेकिन इकोनॉमिक टाइम्स का आज एक एडिटोरियल भी है जो मैं आपको प्रोवाइड कर रहा हूं, उसमें उन्होंने दिया है कि ये कठिन तो है लेकिन हासिल किया भी जा सकता है। तो उसमें उन्होंने कुछ बहुत खूबसूरत पॉइंट्स दिए हैं। देखिए, सिविल सर्विस की तैयारी करने के लिए आपको यही तरीका अपनाना पड़ता है। एक पॉइंट उन्होंने दिया कि हमारी जो अभी जीडीपी की जो गति है, जो हम 7 पॉइंट के आसपास है, उसे बढ़ाकर के 12.8 के आसपास ले जाना होगा, और यह आसान काम नहीं है। अगर हमने इस टारगेट को अचीव कर लिया तो फिर हो सकता है कि 5 सालों में हमारी 350 लाख करोड़ की अर्थव्यवस्था तैयार हो जाए। और अगर हम वर्ल्ड इकोनॉमी को देखें तो वर्ल्ड इकोनॉमी की जो अभी दर है, विश्व दर है जीडीपी की, वो 3.9 है। इसका मतलब है कि इससे 3 गुने तेज की दर से भारत को अपनी अर्थव्यवस्था को बढ़ाना पड़ेगा। अब ये छोटा सा ही एडिटोरियल कमेंट है, और इसमें उन्होंने बड़े खूबसूरत तरीके से बताया है कि अगर ऐसा करना ही है तो फिर आप उसे कैसे कर सकते हैं। तो इसमें इन्होंने दोस्तों बहुत अच्छे से कुछ उपाय बताए हैं। एक, इन्होंने पावर सेक्टर में सुधार करने की बात कही है कि पावर सेक्टर में एनर्जी में सुधार करना चाहिए। लोग इतनी चोरी कर लेते हैं एनर्जी की, और वो क्या सरकार उन पर कुछ कार्रवाई नहीं करती है, फ्री डिस्ट्रीब्यूशन कर रही है गरीबों के लिए, उसे रोका जाना चाहिए। क्योंकि इंडस्ट्री सेक्टर को इलेक्ट्रिसिटी नहीं मिल पा रही है तो वो डीजल विजल से अपना काम चलाते हैं, इससे कारण वो बहुत महंगा पड़ जाता है। फिर लैंड एक्विजिशन की भी बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो गई जिससे उद्योग नहीं लग पा रहे हैं। कृषि क्षेत्र में बढ़ोतरी बिल्कुल नहीं हो रही है, कृषि क्षेत्र में बहुत सुधार करने की जरूरत है, कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग वगैरह को और ज्यादा बढ़ावा देना चाहिए। तो इस तरीके से उन्होंने कुछ बहुत खूबसूरत उपाय भी इसमें बताए हैं, इससे हम अपने इस टारगेट को पा सकते हैं। और यदि भारत ने ऐसा कर लिया तो भारत, वैसे भी आपको पता है कि अब हम लगभग छठवें स्थान पर पहुंच गए हैं, पिछले साल हमने फ्रांस को पीछे छोड़ दिया है, और उम्मीद की जा रही है कि 1-2 साल में ही भारत अब ब्रिटेन को भी पीछे छोड़ करके विश्व की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन जाएगा, जो बहुत बड़ी बात होगी। देखिए, अगर आपको अब दुनिया में अपना दबदबा बनाना है तो ये तभी संभव हो सकेगा जब आर्थिक रूप से आप अपने आप को मजबूत कर सकें। तो दोस्तों, ये आंकड़ा बहुत इंपॉर्टेंट है और इसको आपको नोट कर लेना चाहिए और समय समय पर दोहराते भी रहें। ये एक तरह से तुरुप का पत्ता है जिसे आप अपनी आर्थिक अर्थव्यवस्था से संबंधित जो प्रश्न पूछे जाएंगे उनमें इस्तेमाल कर सकेंगे, लेकिन बहुत सटीक तरीके से और सही जगह पर इस्तेमाल कीजिएगा। आज आपको एक करेंट कंटेंट प्रोवाइड किया गया है दोस्तों, ओडिशा की आपदा पर, धर्मेंद्र प्रधान जी का लिखा हुआ लेख है जो टाइम्स ऑफ इंडिया में छपा था, बहुत इंपॉर्टेंट आर्टिकल है। किस मायने में, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि सीधे सीधे एग्जामिनेशन में पूछ लिया जाएगा कि ओडिशा की आपदा का किस तरह से निराकरण किया गया। जो आपका डैमेज कंट्रोल है, आपका जो आपदा प्रबंधन है, आपदा प्रबंधन एक इंपॉर्टेंट आपका टॉपिक है और हर साल एक क्वेश्चन आपदा प्रबंधन पर आता ही आता है, डिजास्टर मैनेजमेंट। उसमें आपको बहुत से पॉइंट्स मिलेंगे कि डिजास्टर मैनेजमेंट आप करेंगे कैसे, तो प्लीज आप उसे ध्यान से पढ़िएगा और उसके कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स नोट कर लीजिएगा। दोस्तों अब मैं आता हूं मुख्य विषय पर। देखिए संसद का सत्र प्रारंभ होने वाला है और उसमें न्यूज में भी आपने सुना कि जब भी इस तरह का सत्र पहली बार शुरू होता है साल भर में तो उसे उस संयुक्त अधिवेशन को राष्ट्रपति जी संबोधित करते हैं और राष्ट्रपति जी के संबोधन के बाद फिर उनके संबोधन पर चर्चा होती है और फिर धन्यवाद प्रस्ताव पारित किया जाता है। मतलब सदन राष्ट्रपति जी को धन्यवाद देता है कि आप आए और आपने हमें संबोधित किया। यहां मित्रों मैं एक बात स्पेशली आप सबसे कहना चाहूंगा कि जब राष्ट्रपति जी का संबोधन होगा आप उसे लाइव देख भी सकते हैं तो बार बार राष्ट्रपति जी कहते हैं कि मेरी सरकार आप सुनेंगे उसमें। और याद रखिए कि संवैधानिक रूप से जो सरकार है वो राष्ट्रपति जी की ही है। व्यावहारिक रूप में हम बोलचाल में भी ये कहते हैं मोदी जी की सरकार, भारतीय जनता पार्टी की सरकार, एनडीए की सरकार, लेकिन इनफैक्ट संवैधानिक दृष्टि से याद रखिए वो राष्ट्रपति की ही सरकार होती है। तो अगर एग्जामिनेशन प्री में खासकर इस तरह के क्वेश्चंस पूछ लिए जाते हैं तो आपके दिमाग में क्लियर होना चाहिए कि जो सरकार होती है वो राष्ट्रपति की ही होती है। तो इस संबोधन में राष्ट्रपति जी दो बातें सबसे महत्वपूर्ण कहते हैं। पहला तो ये है कि मेरी सरकार की क्या क्या उपलब्धियां रही है, क्योंकि पिछली सरकार ही अब कंटिन्यू है तो हो सकता है उपलब्धियों के बारे में बात करें, और मेरी सरकार का आगे का एजेंडा क्या होगा, यानी कि मेरी सरकार आगे क्या करने जा रही है। तो यहां आपको बहुत सी चीजें मिलती हैं उनके अभिभाषण में, कुछ डेटा मिलते हैं अचीवमेंट के जो पिछली उपलब्धियां हैं और आगे की योजनाओं के बारे में आपको जानकारी मिलती है और साथ ही साथ कुछ डेटा भी मिलते हैं। तो खासकर ऐसे स्टूडेंट जो इस बार एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि वो मेंस में बैठेंगे, उनके लिए ये अभिभाषण का जो डॉक्यूमेंट होता है बहुत बहुत और बहुत इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट हो जाता है। तो मित्रों इस बात का आप लोग विशेष ध्यान रखिएगा। और इसी के बीच में न्यूज में भी आपने सुना कि जब संसद सत्र चलेगा तब स्पीकर का चुनाव होगा। भारतीय प्रणाली में यही है कि जो स्पीकर होते हैं यानी कि जो लोकसभा के अध्यक्ष होते हैं वो जो सरकार होती जिस पार्टी की उन्हीं पार्टी से ही वो स्पीकर का चुनाव करते हैं। और व्यावहारिक दृष्टि से अगर आप देखें तो वो जरूरी भी है क्योंकि स्पीकर ही लोकसभा का सर्वे सर्वा होता है। पूरी की पूरी कार्यप्रणाली क्या होगी स्पीकर डिसाइड करता है। तो यदि दूसरी पार्टी का स्पीकर आ जाए तो हो सकता है कि फिर वो लगातार सरकार के लिए परेशानियां खड़ी करें, मतलब ये हो सकता है। तो स्पीकर का चुनाव होगा जो स्वाभाविक तौर पर जो पार्टी सरकार में है उन्हीं पार्टी के दल के एक व्यक्ति होंगे, सांसद होंगे। तो दोस्तों मुख्य विषय के बारे में बस इतना ही, चूंकि अब समय इजाजत नहीं दे रहा है कि इस पर हम लोग कुछ और बातें कर सकें। जहां तक न्यूज़पेपर्स की क्लिपिंग्स का सवाल है मैं कुछ बहुत अच्छी क्लिपिंग्स आज आपको प्रोवाइड कर रहा हूं, आप सब देख लेंगे। एक बात मैं विशेष रूप से कहना चाहूंगा कि एक मैं आपको बिजनेस स्टैंडर्ड का आर्टिकल दे रहा हूं कृषि क्षेत्र के ऊपर। मैं चाहूंगा कि इस आर्टिकल को आप लोग ध्यान से पढ़ें। हो सकता है कि मैं इस आर्टिकल को मुख्य विषय के रूप में कल अपने डेली ऑडियो लेक्चर में लूं, ये हो सकता है यदि कोई दूसरी महत्वपूर्ण घटना नहीं हुई तो। और वैसे भी ये आर्टिकल इतना इंपॉर्टेंट आर्टिकल है कि इसे आपको वैसे भी पढ़ना चाहिए। तो दोस्तों न्यूज़पेपर के बारे में बस इतना ही। ईमेल लिखने वाले सभी मित्रों को धन्यवाद देता हूं और उन्हीं में से कुछ साथियों के नाम हैं राजेश कुमार राजस्थान से, सुमन कुमारी, गौरव चौहान और वीरेंद्र पामनिया, आप सबका बहुत बहुत आभार। और इसी के साथ ही अब आज के इस डेली ऑडियो लेक्चर को यहीं समाप्त करते हैं। नमस्कार।